दिन भर तारीख 26 मई दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पूरे हुए मोदी सरकार के दो साल। सहारनपुर में मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां।
देश ने भली भांति हमारे काम को देखा। यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है।
उधर कांग्रेस ने सरकार तो सरकार मोदी पर ही उठाए सवाल।
व्यक्ति पूजा या अगर मैं कहूँ मोदी स्तुति, इस सरकार का चार चेहरा और चरित्र बन गई है।
इन दो सालों में प्रधानमंत्री मोदी को कैसे आंका है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, ये भी आपको सुनाएंगे। खबरें और भी होंगी लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में एनडीए की सरकार ने आज अपने दो साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे अपने दो साल के काम का हिसाब देने के लिए सहारनपुर आए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दो मलयाली मछुआरों की हत्या के मामले में इतालवी मरीन सल्वाटोर जिरोन को इटली जाने की इजाजत दे दी है। इस मामले में कोर्ट ने इतालवी राजदूत के सामने ताजा हलफनामा दायर करने की शर्त रखी है। शर्त के अनुसार यदि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चल रहा मामला भारत के पक्ष में जाता है तो सल्वाटोर जिरोन को भारत लौटना होगा। समाचार एजेंसियों के मुताबिक जिरोन ने जमानत की शर्तों में रियायत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और भारत सरकार ने इसका विरोध नहीं किया है। इतालवी मरीन के वकील सुहेल दत्त ने कहा,
सार्जेंट जिरोने जो है वो वापस चले जाएंगे इटली। इटली में रहेंगे, इटली छोड़ेंगे नहीं और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रहेंगे इटली में, और उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको पुलिस स्टेशन वहां पे महीने में एक बार विजिट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी को वो रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी।
ये थे इतालवी मरीन के वकील सुहेल दत्त के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि केरल की परंपरा के अनुसार लोगों के खाने की पसंद को नहीं बदला जाएगा। ये बात उन्होंने पुलिस एकेडमी में बीफ पार्टी को लेकर उठे विवाद पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। 19 मई को केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की जीत के बाद अगले दिन त्रिशूर पुलिस एकेडमी में कैडेट्स ने बीफ पार्टी का आयोजन किया था। इसके बाद एकेडमी के आईजी ने बीफ पार्टी की जाँच के आदेश दिए थे। लीबिया के तट के नज़दीक प्रवासियों से भरी एक नाव के डूब जाने से कई दर्जन प्रवासियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। भूमध्य सागर में मानव तस्करी पर निगरानी रखने वाले यूरोपीय यूनियन जलसेना बल के प्रवक्ता का कहना है कि हादसे में लगभग 30 लोगों की मौत हुई है जबकि 50 प्रवासियों को बचा लिया गया है। इतालवी तटरक्षक बलों के अनुसार हादसे में लगभग 80 लोगों के डूबने की आशंका है। नाइजीरिया में शेवरॉन तेल के कुओं पर चरमपंथियों ने हमला किया है। हमले के कारण अमेरिकी कंपनी शेवरॉन ने समुद्र में चल रही अपनी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। खुद को नाइजर डेल्टा एवेंजर कहने वाले इस समूह का कहना है कि उन्होंने बिजली आपूर्ति लाइनों को उड़ा दिया है। स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी है। एवेंजर नाम के इस समूह का कहना है कि वे चाहते हैं कि नाइजर डेल्टा के इलाके को इस इलाके में होने वाले तेल व्यवसाय के लाभ का बड़ा हिस्सा मिले। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सीरिया में लोगों की मदद करने की उनकी कोशिशें तय लक्ष्यों से कम हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज मौका था मोदी सरकार के दो साल पूरे होने का। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा और दो साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए जनता के सामने आने का फैसला किया और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को चुना। आज के दिन बीजेपी ने इसे विकास पर्व के रूप में प्रचारित किया और एक महारैली का आयोजन किया। मंच पर उनके साथ राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे।
देश ने भली भांति हमारे काम को देखा है, हमारे काम को परखा है। और जब संसद में पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है,
तो नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के काम की उपलब्धियां बताई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत को उठाया।
यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है अब आपको नहीं करने दिया जाएगा।
ये नरेंद्र मोदी गन्ना किसानों की हालत पर बोल रहे थे। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं उत्तर प्रदेश से अपने सहयोगी समीर आत्मन मिश्र को। समीर, सरकार के मुखिया के तौर पर मोदी ने जो लेखा जोखा दिया सरकार का, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा गन्ना किसानों की हालत पर था और इन्होंने चुनौती दी, तो किसको चुनौती दे रहे हैं ये?
जी मोहनलाल जी, जाहिर सी बात है चुनौती दे रहे हैं सीधे जो मौजूदा राज्य सरकार है और राज्य गन्ना किसानों की अगर बात की जाए तो सीधे सीधे उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और गन्ना किसानों की मदद ना कर पाने या उनका हक ना दिलाने की जो बात उठाई वो सीधे तौर पर उसी को उसी पर केंद्रित थी। और दूसरे उन्होंने भ्रष्टाचार और तमाम और चीजों का भी जिक्र किया जिसमें जाहिर तौर पर वो कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठा रहे थे जिसने की अभी तक ज्यादा टाइम पर केंद्र में और सरकार में नहीं, हालांकि राज्य में तो उसकी सरकार पिछले काफी दिनों से नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने जो अभी आप सुना भी रहे थे उनकी क्लिप की गरीबों पर उनकी सरकार फोकस कर रही है, तो अपने सरकार की पिछले दो साल की इस तरह की योजनाओं को जो उन्होंने खास तौर पर गरीबों के लिए शुरू की है जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने गैस की जो सब्सिडी की बात है उसकी चर्चा की कि 1 करोड़ लोगों ने एक तरफ सब्सिडी अपनी छोड़ी है और दूसरी तरफ 5 करोड़ लोगों को अगले 3 साल में वो गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया और दूसरे मौजूदा राज्य सरकार और पिछली केंद्र सरकार की खामियों को उन्होंने गिराने में कोई कोताही नहीं की।
हालांकि उन्होंने ना तो समाजवादी पार्टी का नाम लिया ना ही किसी और दल का नाम लिया, लेकिन सरकार के दो साल सरकार के 2 साल मनाने के लिए वो सहारनपुर ही क्यों आ पहुंचे?
इसके लिए भी एक तरह से देखिए कि सहारनपुर बिल्कुल उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी छोर है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा वहां से बट रही है। नरेंद्र मोदी की कई रैलियां और कई कार्यक्रम उनके पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। बनारस पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और जो उनका संसदीय क्षेत्र भी है। इसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 2017 के विधानसभा चुनाव के मिशन 2017 की तौर पर इस कार्यक्रम को पेश कर रही है। उसके लिए उन्होंने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस बड़े शहर का चुनाव किया। किसी दूसरे शहर के चुनाव में और भी कई तरह की दिक्कतें थी, तो एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये चुनावी रैली की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे अब इसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा।
मतलब आज उन्होंने एक तरह से गन्ना
जी दूसरे एक गन्ना किसानों की जो एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को की एक बड़ी समस्या है उसका एक बड़ा केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर भी उसमें आता है। तो ये एक मुख्य कारण था जिसके लिए उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर को चुना।
और मतलब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कि चुनाव होने हैं तो इसलिए उन्होंने सहारनपुर का चुनाव किया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आत्मन मिश्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उधर कांग्रेस पार्टी ने एनडीए सरकार के 2 साल के काम को नाकाम सरकार के रूप में प्रचारित किया। कांग्रेस के नेताओं ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और जो भी योजनाएं शुरू की वो कांग्रेस के जमाने से पहले से ही चल रही थी, मोदी सरकार ने केवल इन योजनाओं के नाम बदल दिए। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी जुबैर अहमद भी मौजूद थे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी की आवाज़ कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स 24 अकबर रोड के प्रेस रूम में गूंजती हुई। दरअसल ये मोदी सरकार की पिछले 2 साल में कथित नाकामियों पर कांग्रेस पार्टी की वीडियो प्रस्तुति की एक झलक थी। आज कांग्रेस पार्टी का मीडिया रूम पत्रकारों से खचाखच भरा था, चारों तरफ कैमरे लगे थे। मीडिया से रूबरू थे कांग्रेस के कुछ पुराने चेहरे जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद और रणदीप सुरजेवाला खास थे। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी मोदी पूजा को बढ़ावा दे रही है।
व्यक्ति पूजा या अगर मैं कहूं मोदी स्तुति, इस सरकार का चार चेहरा और चरित्र बन गई है। कोई उनकी तुलना भगवान से करता है, कोई मसीहा से और कोई फरिश्ते से, पर भगवान तो भक्तों से बड़े होते हैं।
भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जगह जगह जश्न मना रही है। कपिल सिब्बल ने इस पर मजे लेते हुए पूछा, जश्न किस बात का मना रहे हो?
और कहते हैं बड़ी भारी हमने उपलब्धि की कि जनधन का जो थाना अकाउंट्स वो 21 करोड़ आज के दिन है, 21 करोड़। और हमने 2011 से 2014 तक 24 करोड़ अकाउंट, ये भी इनकी उपलब्धि है। तो मैं चुनौती देता हूँ आज मोदी सरकार को और मोदी सरकार के किसी भी मंत्री को कि आओ हमसे बहस करो और चलो पूछते हैं देश की जनता से कि आप जश्न क्यों मना रहे हैं।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी सरकार एक नकलची सरकार है, इसने कांग्रेस के जरिए शुरू की गई योजनाओं को रीपैकेज करके उन्हें नया नाम दिया और कहा कि मोदी सरकार ने ये नई योजनाएं शुरू की हैं। गुलाम नबी आजाद ने इसके कई उदाहरण दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि सफाई के लिए उनकी सरकार ने निर्मल भारत योजना लागू की थी जिसे मोदी सरकार ने बदलकर स्वच्छ भारत का नाम दे दिया, और मोदी सरकार की जनधन योजना असल में कांग्रेस की स्वाभिमान योजना का दूसरा नाम है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की प्रस्तुति में तालमेल की कमी नजर आई। बोलने वाले चार नेता थे लेकिन वो एक दूसरे के अधिकांश बातों को दोहरा रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ इल्ज़ाम है कि इसने खुद एक विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई है। कांग्रेस पार्टी पर गहरी नज़र रखने वाले पत्रकार रशीद किदवाई कहते हैं कांग्रेस आत्मविश्वास के संकट से दो चार है।
जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो परंपरागत राजनीति होती थी जो जाति और धर्म और रीजन के हिसाब से, उससे अलग हटके उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए, उससे उनको व्यापक लाभ हुआ है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि कांग्रेस को वही होता है कि हमारे बाप दादा ने घी खाया था, हमारा हाथ सूंघ लो, अभी भी खुशबू आ रही है, इस तरह की मानसिकता है। तो वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो उनके नेतृत्व को बिल्कुल नकारते हैं और उनको कुछ ही खातिर में नहीं लाते। दो साल में मोदी सरकार का बहुत सी कमियां रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है चाहे विदेश नीति हो चाहे आर्थिक मुद्दे हो, उस पर उसे घेर नहीं पाई है।
अभी हाल में असम और केरल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की साख को और भी ठेस पहुंची है। 2014 में आम चुनाव में हार के बावजूद 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, अब केवल 6 राज्यों में इसकी सरकारें हैं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना दिन भर गुणगान करने में लगी रही, कांग्रेस बीजेपी पर हमला करती रही, लेकिन उसकी धार हमें नदारद दिखी। मैंने BBC हिंदी के संपादक नीतीश त्यागी से अभी कुछ देर पहले बात की और पूछा कांग्रेस क्यों बीजेपी पर हमला उस तरह से नहीं कर पाती, यहां पर भी क्या वो बैकफुट पर है?
मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो इस विमर्श से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है, क्योंकि वो एजेंडा सेट नहीं कर रही। जो एजेंडा सामने आता है उसको वो फॉलो कर रही होती है। एक तो उन्हें विरोध और विपक्ष की तरफ या प्रतिपक्ष की तरफ रहने की आदत नहीं रही है कभी भी,
मतलब हमेशा लगता है कि वो सत्ता में है।
हाँ, उन्हें कभी यकीन ही नहीं होगा कि कभी उनको विपक्ष में इस तरह से रहना पड़ेगा, तो एक तो उसकी तैयारी कभी नहीं रही उनकी। और दूसरी बात यह है कि राजनीति बदलती रहती है लोगों पर, यह कि आप उसके हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, पर मैं उनके चेहरे, उनके तर्क, उनके मुहावरे, उनके विचार बदलते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। और शायद इसलिए आप देखते हैं कि केजरीवाल जब कुछ कहते हैं या वो JNU के जो
छात्र कन्हैया कुमार,
हाँ कन्हैया कुमार जब कुछ कहते हैं तो उनका कहीं ज़्यादा असर कई बार दिखलाई पड़ता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ तो कई बार उनके यूट्यूब पे वीडियो या उनकी बातों को लोग ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि उनकी शायद ग्राह्यता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो कुछ नए तरीके से इस विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस उस विमर्श को कहीं आगे बढ़ाती हुई दिखलाई नहीं देती।
लेकिन अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो जो आरोप केजरीवाल लगाते हैं या जो आरोप आप बात कर रहे हैं छात्र नेता कन्हैया कुमार की, जिस तरह का एग्रेशन उनमें नज़र आता है वो कहीं एग्रेशन कांग्रेस के नेताओं में नज़र नहीं आता। क्या कांग्रेस के नेता अपनी चमक खो चुके हैं?
मैं ऐसा नहीं समझता कि कांग्रेस को ऐसा खारिज या दरकिनार नहीं किया जा सकता, ये कांग्रेस के ऊपर है। और भारत की अपनी जो मुख्य धारा है जो कि बहुत, मुझे लगता है कि बहुत लिबरल है, मुझे लगता है कि वो किसी तरह से बिल्कुल भी एक्सट्रीम नहीं है, वो रूढ़िवादी भी नहीं है, और उसको वो स्पेस जो है कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो कह रही है उसमें कन्विक्शन की कमी है, उसमें इस बात को वो किसी दृढ़ता से या किसी यकीन से वो बात कह रही है या नहीं कह रही है इस बात को लेकर शक है। और मुश्किल बात तो ये है क्योंकि सामने अभी तो जो चुनाव हुए ही हुए हैं उसमें कोई कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, पर अभी जो चुनाव होने वाले हैं चाहे वो पंजाब में होने वाला है या उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उन सब में कांग्रेस मुख्य प्रतिपक्ष की तरह है। अभी तक तो ये उसके पास ये एक्सक्यूज़ थी असम को छोड़ के कि वो वहाँ पर मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं, पर अब जो जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर वो मुख्य प्रतिपक्ष की तरह है और उसके पास अगर एक धारदार एक विमर्श को और सियासी तौर पर उस तरह से आक्रमण ना कर पाना जो है वो उसके अपने लिए और मेरे ख्याल कांग्रेस से ज़्यादा तो भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय जनता के लिए जो है वो ये एक तरफा जो पूरा विमर्श खिसकता चला जाता है वो उनके लिए ज़्यादा परेशानी का सबब है। तो कांग्रेस अब मुझे लगता है कि वो एक तरह की उसमें एक पुनर्जीवन या फिर से जान फूंकने की उसमें ज़रूरत है क्योंकि वो एक ऐसी गेंद से गोल मारने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हवा बहुत कम है।
भारतीय जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस की रणनीति का विश्लेषण कर रहे थे बीबीसी हिंदी के संपादक निधीश त्यागी। बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की छवि तब से उतार चढ़ाव से गुजरती रही है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की उन पर पैनी नजर रही। तो इन दो सालों में नरेंद्र मोदी को कैसे आंका है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी ब्रजेश उपाध्याय की ये विशेष रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क शहर में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। मेडिसन स्क्वेयर गार्डन में रंगारंग समारोह चल रहा था। टाइम्स स्क्वेयर की विशाल टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही थी और शहर का ट्रैफिक मानो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, आप सोच रहे होंगे कि आज किस नामाकूल खपती रॉक स्टार या स्पोर्ट स्टार की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। दरअसल आज तो एक राजनेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन हो रहा है। द इकोनॉमिस्ट ने अंग्रेजी का जुमला पेन इन द एस का इस्तेमाल किया था। इस भाषा पर पत्रिका ने दो दिन बाद एक माफीनामा भी पेश किया जिसपे कहा गया था, द इकोनॉमिस्ट मिस्टर मोदी को पेन इन दी एस नहीं मानता। हमने तो ट्रैफिक जाम पर न्यूयॉर्क में रहने वालों की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है ये दर्शाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों को लगा कि पत्रिका के माफीनामे में भी एक कटाक्ष था। काफी हद तक ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मोदी को लेकर जो असहजता थी उसी की एक झलक थी। उनकी जीत के फौरन बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने मुख्य संपादकीय में उनकी एक बड़ी सी तस्वीर प्रकाशित की थी और उसमें सवाल था, मोदी भारत में चीन जैसी तरक्की का महत्वाकांक्षी सपना दिखा रहे हैं लेकिन वो भारत के डेंग शियाओपिंग बनेंगे या फिर व्लादिमीर पुतिन, यानी वो डेंग की तरह आर्थिक सुधार के चैंपियन बनेंगे या पुतिन की तरह निरंकुश और राष्ट्रवादी नीतियां अपनाकर अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी से उतार देंगे। चुनाव से पहले और जीत के बाद भी शायद ही कोई अखबार या टीवी चैनल था जो मोदी का जिक्र करते हुए गुजरात दंगों की बात नहीं कर रहा हो। नरेंद्र मोदी की कंट्रोवर्शियल बैक स्टोरी, हिज रोल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। उसके बाद के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने भाषणों, मेक इन इंडिया जैसे नारों, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन्स, योग दिवस और अपने कपड़ों की वजह से भी मोदी सुर्खियों में बने रहे हैं। टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा और राष्ट्रपति ओबामा ने उन पर लेख लिखा जिसका शीर्षक था, रिफॉर्मर इन चीफ, यानी प्रधान सुधारक। ओबामा ने लिखा, जब वो वॉशिंगटन आए थे तो नरेंद्र और मैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर गए थे। वहां हमने किंग और गांधी की बात की और ये बात भी हुई कि हमारे देशों की जो विविधता है, अलग अलग पृष्ठभूमि और धर्मों की, वो हमारी ताकत है और हमें उसे बचाना है। लेकिन गुजरते दिनों के साथ इन अच्छी खबरों पर असहिष्णुता, गोमांस, धर्मांतरण से जुड़ी सुर्खियां हावी होने लगी हैं। विकास की जगह कन्हैया की बातें होने लगी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में राजस्थान के स्कूल पाठ्यक्रम से नेहरू को हटाए जाने की चर्चा होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी संस्था के सदस्यों को वीजा नहीं दिए जाने की बात हो रही है। वॉशिंगटन के ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट में इंडिया प्रोजेक्ट की डायरेक्टर तन्वी मदान कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अभी भी भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है लेकिन घरेलू मीडिया की जो बहस है उसकी छाप भी अक्सर नजर आती है और उनकी सामाजिक नीतियों पर काफी गौर किया जा रहा है।
I think because of the history of Prime Minister Modi's chief ministership that there is some attention on these issues and there is a view
मुझे लगता है कि उनके मुख्यमंत्री काल का जो अतीत है उस वजह से इन मामलों पर खास ध्यान दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि वो इन पर बोलें, अपनी नीति स्पष्ट करें और शायद ये स्वाभाविक भी है कि उनके सामाजिक एजेंडा पर पहले की सरकारों के मुकाबले ज्यादा पैनी नजर रखी जा रही है।
वहीं एक दूसरे थिंक टैंक के भारतीय मूल के जाने माने विश्लेषक, जो इस मामले पर अपना नाम नहीं देना चाहते, उनका कहना था कि डर इस बात का है कि ये सुर्खियां मोदी सरकार के कई अच्छे कामों को दबा देंगी। हाल ही में वॉशिंगटन के दौरे पर आए भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से जब बीबीसी ने खास बातचीत के दौरान ये पूछा कि जो सरकार विकास के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, वहां से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विकास की जगह कन्हैया की खबरें क्यों आ रही हैं, तो उनका कहना था कि सरकार का एजेंडा बिल्कुल नहीं बदला है।
कुछ विषय पत्रकारों को ज्यादा समझ में आते हैं, जमीन पर कोई इंटॉलरेंस नहीं है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के भाषण पढ़ दिए जाएं, उसकी तुलना में तो हमारे यहाँ बहुत अधिक संयम है।
मोदी के कई समर्थक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर मोदी के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये भारत को पश्चिमी देशों के बराबर खड़ा होता नहीं देखना चाहते और इसलिए ज्यादातर नकारात्मक खबरें ही सुर्खियां बनती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से मीडिया से एक दूरी सी बना रखी है। विवादास्पद घरेलू मुद्दों पर भी वो अक्सर हफ्तों महीनों तक चुप नजर आते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र हो, विश्व बैंक हो या फिर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंच, भारत को अगर असरदार तरीके से अपने हितों की बात करनी है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ संवाद बनाने की जरूरत होगी और वहां तीखे सवालों के लिए भी तैयार रहना होगा। मोदी की मीडिया नीति फिलहाल ऐसा करती हुई नहीं दिख रही है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
तो इन दो सालों में प्रधानमंत्री मोदी को कैसे आंका है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, ये आप हमारी विशेष प्रस्तुति नरेंद्र मोदी के दो साल पर सुन रहे थे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में आज एक बस में धमाका हुआ है और इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक 40 लोग इस बस में सवार थे। धमाके को लेकर क्या कुछ हो रहा है, हालांकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। और जानकारी के लिए चंडीगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा के पास चलते हैं। संजय शर्मा जी, ये बताइए कि धमाके को लेकर पुलिस किसी परिणाम पर पहुंची है, क्या कहना है पुलिस का?
पुलिस अभी काफी आशंकित है कि इसका ये किस तरह का धमाका हो सकता है। एनआईए के सहयोग मांगा है और एक तीन सदस्यीय जांच दल बना दिया है जिसमें एडीजीपी रैंक के ऑफिसर उसको लीड करेंगे। तो लगता है कि हरियाणा सरकार उसको उस तरह से देख रही है, क्या कोई कहीं किसी आतंकवाद से संबंधित तो नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों में एक दो और छोटे छोटे धमाके हैं जिनमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए लगता है कि कोई पैटर्न हरियाणा सरकार को नजर आ रहा है और इसकी वजह से उन्होंने जांच दल को तीन मामले दिए हैं, एक आज का, एक मार्च का और एक जनवरी का। तो सरकार लगता है इसको देख रही है कि कहीं किसी तरह का कोई आतंकी है इस तरह का मामला ना हो, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिनके आधार पर वो कह पाए। एक बैटरी मिली जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये बम किसी इस नेचर का हो कि जिसमें कोई डिवाइस यूज किया गया हो। एक थैला और एक बैटरी मिली है जिसके आधार पर पुलिस अभी जांच को आगे बढ़ा रही है। हाँ। लेकिन जो जांच जो धमाका है वो नेचर का नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो।
अच्छा, ये बताइए कि ये मुझे बताइए कि ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और फिर ये किस तरह से धमाका हुआ, कितने लोग सवार थे?
जी, ये बस सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही थी और करीब दोपहर के 2:30 बजे एक कुरुक्षेत्र के पास पिपली स्टैंड है, बस स्टैंड, उसके पास ये अचानक धमाका हुआ और उस धमाके में करीब 8 लोग घायल हुए जिनमें से ड्राइवर कंडक्टर भी दोनों घायल हुए, लेकिन उन लोगों ने बहुत खूबसूरती से
बचा लिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा चंडीगढ़ से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं,
मैं हूँ स्वाति बख्शी।
स्वाति बख्शी मेरे साथ हैं और स्वाति बख्शी काफी दिनों की छुट्टी के बाद
जी हाँ, आई हैं। तकरीबन 20 दिनों की
छुट्टी में आप क्या कर रही थी?
बताना पड़ेगा।
अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, स्वाति बख्शी का विवाह हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको स्वाति।
बहुत बहुत शुक्रिया।
और श्रोताओं को बताने का दरअसल मकसद यही है कि श्रोता भी आपको
बधाई भेजे,
हाँ अगली चिट्ठी ये लिखे कि स्वाति बख्शी को मुबारकबाद हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके पास पहले से ही काफी चिट्ठियाँ मौजूद है, आइए शुरू करते हैं हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है।
जी हाँ, पहला मैं पोस्ट कार्ड ले रही हूँ, राजा राम निषाद का है, अमेठी उत्तर प्रदेश से इन्होंने लिखा है और सभी को नमस्कार भेजते हुए बता रहे हैं कि इंदिरा जी पर जो रेहान फजल की विवेचना थी वो उन्हें बहुत ही पसंद आई है। उसके अलावा दुनिया जहान में जो इराक के विषय पर चर्चा की गई थी वो भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई है।
जी राजा राम निषाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अमेठी में रहते हैं और वहाँ से हमें चिट्ठी लिखी है। अमेठी में हमारे और भी बहुत सारे श्रोता हैं, एक श्रोता है प्रमोद श्रीवास्तव जो कैथनपुरवा से हमें एसएमएस के जरिए अपनी राय भेजते हैं और हर कार्यक्रम के बाद उनका एसएमएस हमारे पास आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुनते रहिए, हमारे पास और भी कई चिट्ठियां हैं। तो स्वाति अगली चिट्ठी क्या है आपके पास?
मेरे पास एक लंबा सा पत्र है लेकिन नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा है, कहाँ से लिखा है ये भी मुझे नहीं पता चल पा रहा। इन्होंने यहाँ पर एक छोटे से साइन किए जिससे समझना मुश्किल है।
राइटिंग तो मुझे इनकी जो लेख है वो तो जानी पहचानी लग रही है लेकिन इन्होंने ना तो नाम लिखा है न कुछ जगह का नाम लिखा है। शायद चिट्ठी की शुरुआत में कुछ जगह का नाम है लेकिन पंतल लंग ऐसा कुछ नाम है, समझ नहीं आ रहा है। अपने श्रोताओं से गुजारिश हम जरूर करेंगे कि जब भी हमें चिट्ठी लिखें, ईमेल लिखें तो अपना नाम, गांव का या शहर का नाम, पता, किस प्रदेश से लिख रहे हैं ये जरूर लिखिए ताकि हमको भी आसानी हो और आपको भी सुनने में अच्छा लगे। लेकिन इन्होंने कहा क्या है?
कह ये रहे हैं कि इनके पास पोस्ट कार्ड नहीं था इसलिए इन्हें कागज पर चिट्ठी लिखनी पड़ी है ताकि अपनी सहूलियत से सारी बातें कह सकें। और इन्होंने तारीफ की है दिव्या आर्या की जिन्होंने केरल से चुनावों के दौरान जो प्रस्तुति की, जो रिपोर्ट्स की और विश्लेषण भेजे उनकी इन्होंने तारीफ की और कहते हैं कि ये बीबीसी हिंदी समाचार कार्यक्रम की समग्रता का द्योतक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार से अब आपको अनाम ही कहूंगा, हमारे अनाम श्रोता अगली बार हमें लिखें तो अपना नाम जरूर लिखेगा।
एक और चिट्ठी हमें मिली है, ये भी हाथ से लिखी हुई लंबी सी चिट्ठी है, पलटू राम की और अमेठी से ही आई है।
अमेठी से ही दूसरी चिट्ठी आई है, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आप अमेठी वालों को। पलटू राम जी आपने शायद ये पहली बार चिट्ठी लिखी है, लिखते क्या है?
कह रहे हैं कि ये रोज शाम को 7:30 बजे इंतजार करते हैं कि कोई नई सटीक सूचना इनको मिलेगी रेडियो के जरिए। तारीफ ही की है इन्होंने, बताते हैं कि इन्हें खासकर फैला उजियारा विशेष रूप से पसंद है, उसके अलावा खेल एवं अन्य सामयिक कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। कह रहे हैं कि भविष्य में अपनी विश्वसनीयता जरूर बनाए रखें।
बिल्कुल, ये तो हमें इसका हमेशा ख्याल रहता है। मैं आपसे पलटू राम जी सिर्फ यही कहूंगा कि विश्वसनीयता ही हमारी वो एकमात्र पूंजी है जो हमें आपके सामने आने के लिए हौसला देती है।
अभय कुमार निराला का पत्र है बक्सर बिहार से, कहते हैं कि पटना से श्री मणिकांत ठाकुर के बाद मनीष शांडिल्य और नीरज सहाय बीबीसी की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं, वे केवल बिहार सरकार की विशेषता पर रिपोर्ट करते हैं जबकि चारों तरफ से रिपोर्ट देनी चाहिए, जैसे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी शिक्षक बहाली और उसके अलावा तमाम मसले।
समझ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम संवाददाता आपकी इस राय को सुन रहे होंगे, उन तक आपका ये मैसेज पहुंच गया है। देखिए दो संवाददाताओं में तुलना थोड़ी जायज नहीं होती है क्योंकि हर आदमी के अपनी कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मणिकांत ठाकुर ने जिस तरह से काम किया या आज के संवाददाता जिस तरह से काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन आपकी राय अगर ये है तो उन तक पहुंच गई होगी।
जल्दी से मैं दो ईमेल्स उठा पाऊंगी। ग्राम मनकाचर असम से बशीरुल इस्लाम लिखते हैं कि 20 मई को विवेचना में राजीव गांधी की हत्या के बारे में कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया है। दूसरा मेल मंडी हिमाचल प्रदेश से पीयूष गुप्ता ने लिखा है और इन्होंने आरोप लगाया है राजेश जी।
आरोप लगाया है?
जी हाँ, कह रहे हैं कि आप दो दिन से श्रोताओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि दिन भर और नमस्कार भारत, विश्व भारती और घटनाचक्र को बीबीसी की साइट पर अपलोड नहीं किया गया है।
ये पीयूष गुप्ता जी, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि कई बार तकनीकी तौर पे कुछ गड़बड़ियां होती हैं जिससे आप हमारा कार्यक्रम, ताजा कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब समय बहुत हो चुका है इसलिए अब नमस्कार।
और इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सीरिया में लोगों की मदद करने की उनकी कोशिशें तय लक्ष्यों से कम हैं। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर यान इंग्लैंड ने कहा है कि योजना के अनुसार मई के महीने में लगभग 10 लाख लोगों तक मदद पहुंचाई जानी थी लेकिन अब तक वे केवल 1,60,000 लोगों तक ही पहुंच पाए हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की एनडीए की सरकार ने आज अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की इस सभा में बस इतना ही। अगला कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।